वो जगह समाप्त करने का शास्त्रों में निर्देश है। या तो भगवान के राज्याभिषेक के साथ कथा की समाप्ति कर दो, और या भगवान के परमधाम गमन के साथ समाप्त कर दो। भगवान के परमधाम गमन के साथ कथा की समाप्ति इसी कथा के आधार पर लिखी हुई अध्यात्म रामायण के साथ कर दी थी, और यहां अपने लोग भगवान के राज्याभिषेक के साथ ही कथा पर विश्राम करेंगे, कथा की विरामता आएगी और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के रामचरितमानस के पाठ के बाद हमने चालू की है, इसलिए उन्होंने राज्याभिषेक के बाद भगवान के परम धाम गमन की लीला नहीं लिखी है। बहुत से लोग ऐसा भी मन में विचार रखते हैं कि इसमें लवकुश कांड कोई अलग से है क्या? अलग से नहीं है। लवकुश की इतनी कथा आती है कि सीता जी गर्भवती थी और उनकी वन में जाने की इच्छा हुई। भगवान ने तो किसी एक व्यक्ति के कहने पर ये मानस बना लिया था कि सीता को वन में भेजना भी अभीष्ट था, उनको सोच लिया था कि वन में भेजना है, और इधर सीता ने भी कह दिया कि मुझे वन में भेज दीजिए, थोड़ा वन देखने की इच्छा है। तो लक्ष्मण जी उनको पहुंचाने के लिए गए थे, तब वहां लक्ष्मण जी को सीता जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, मैं गर्भवती हूं, राम ने मेरा त्याग किया है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसका मैं भी क्या कर सकता हूं, तो मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूं कि मैं गर्भवती हूं। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस बात को मैं स्वीकार करता हूं आपके कहने से ही, मैं आपके चरणों के अतिरिक्त आपके शरीर को देखना उचित नहीं मानता, और ये प्रमाणित करने के लिए तो कहते हो कि भाई गर्भवती हूं, मान लिया मैंने। इधर शत्रुघ्न जी मथुरा पर लवणासुर पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, और उस दिन वाल्मीकि जी ऋषि के आश्रम में ठहरे, और उसी रात ही सीता जी के दो बालक हुए थे, और इन्हीं दोनों बालकों का खूब अच्छे ढंग से पालन पोषण करके सीता जी ने आगे बढ़ाते हुए वाल्मीकि जी महाराज को सौंप दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने उनको रामायण का पाठ करना सिखाया, और वे इस वाल्मीकि रामायण को अपने तंदूरे पर गाने लगे, और गाते गाते बहुत ऋषि मुनियों के बीच में गाए, गाते गाते अयोध्या आए, और अयोध्या में राम जी महाराज उनकी कथा सुनते हैं। इतनी आती है लवकुश की कथा, अलग से लवकुश कांड बोल करके नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने भी कोई लवकुश कांड अलग से लिखा, इस विषय में भी अनेक मत भेद हैं। गीता प्रेस के द्वारा जो रामचरितमानस आया है, ये गीता प्रेस का बहुत प्रामाणिक रामचरितमानस है, क्योंकि गीता प्रेस में जो रामचरितमानस छपा है ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनुसार ही है, माने उनके हाथ की लिखी हुई कोई प्रमाणित प्रतिलिपि है, उसके आधार पर लिखा है। यदि उसमें लवकुश कांड भी होता तो गीता प्रेस से छप जाता। कई कई का ऐसा मत है कि जो गीता प्रेस से छपा है वो तो पूर्णतः ठीक है, शुद्ध पाठ है, कोई बात नहीं, पर लवकुश कांड यदि उपलब्ध होता है तो वो देना चाहिए। गीता प्रेस में ये बात है कि भाई जो प्रामाणिक पाठ था वो हमने ले लिया, लवकुश को, लवकुश कांड को कई क्षेपक मानते हैं, कोई और किसी का रचा हुआ मानते हैं, तो ये गीता प्रेस में किसी भी शास्त्र का कोई विवाद हो ये अभीष्ट नहीं था। अतः जो निर्विवाद चीज मिली वो उन्होंने छापी है। वाल्मीकि रामायण में भी दो जगह विश्राम है। आजकल के इस नास्तिक युग में बहुत दिव्य रूप वाले भगवान और भगवती की लीलाओं को देखकर लोग उनको जन सामान्य के अंदर तर्क की दृष्टि से देखते हैं, जैसे राम को इतना कड़वा वचन नहीं कहना था, जैसे राम को सीता को अग्नि के अंदर जाने से रोकना था। ये बातें बहुत छोटे स्तर पर हैं। उन लोगों की दृष्टि महाराज गोस्वामी जी ने नारी जाति का बड़ा अपमान किया। महाराज जी ने पूछा कि भाई कैसे किया अपमान, बताओ हम भी देखें, बड़ा सम्मान हुआ है वहां तो। नहीं, नारी जाति का बड़ा अपमान हुआ है। महाराज जी ने कहा कि नारी जाति के सम्मान की रक्षा के लिए ही रामायण है। कैकेयी को वरदान दिया, उस वरदान की रक्षा के लिए दशरथ जी महाराज ने अपने मन को मसोज के रखा और राम जी ने उसका त्याग करके वन में जाना स्वीकार किया। कितना ऊंचा सम्मान। और इधर सीता जी को रावण ले गया तो राम जी ने सीता जी की खोज के लिए कितना प्रयास किया। ये नारी जाति का सम्मान। इधर कटुभाषी था और सबसे हित की बात कहने लड़ता था, झगड़ता था, लेकिन मंदोदरी रावण के भावना के विपरीत बात बोलती तो भी मंदोदरी को झड़क के जवाब नहीं दिया। कितना नारी जाति का सम्मान। रावण सीता को हर के ले गया और अशोक वाटिका में रखा, और हर के ले जाते समय में भी सीता जी के नारी जाति के सम्मान के बहुत से उदाहरण दिए। तो उन्होंने कहा कि जी लिखा है ना कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये नारी जाति का जो अपमान है। महाराज जी ने इतना पूछा कि ये चौपाई कहाँ आई है, कहा कि ये चौपाई तो अयोध्या कांड में आई है। अच्छा, अयोध्या कांड में कहाँ आई है, कि जहां स्त्रियों का प्रसंग है वहां आई है। अब ये बात सुनकर के महाराज जी ने कहा कि ऐसा है नहीं, आपको अध्ययन नहीं है। सुनी सुनाई बात के ऊपर विश्वास कर लेना ये ठीक नहीं है। केवल सुनते हो तुम कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, पर बोलो तो सी कौन बोलता है, कौन बोलता है। तो महाराज जी के साथ में रहने वाले और भी लोग थे, उनका कि आज हमको इस विषय में नई दिशा मिली कि भाई कोई भी प्रश्न हो उसका आगे पीछे ठीक ढंग से विचार करके प्रश्न करना चाहिए। ये आक्षेप करना मामूली बात नहीं है। राम जी महाराज को जब मालूम था कि सीता शुद्ध है तो सीता को ऐसे कठोर वचन क्यों कहे। उन्होंने कठोर वचन सीता के लिए नहीं कहे, उन्होंने कठोर वचन आदर्श की स्थापना के लिए कहे। कठोर वचन कहने का अंत में परिणाम अच्छा निकला या बुरा निकला, कि सीता अग्नि में चली गई। अच्छा, अग्नि में जाने का परिणाम क्या हुआ, कि सीता नहीं जली। सीता जली नहीं, देवता लोग प्रकट हो गए, उन्होंने राम जी को बोल भी दिया कि आइंदे आप सीता को कटु वचन नहीं कहना। तो अंत में राम जी ने क्या कहा कि मैं जनता के विश्वास के लिए ये सब बात बोला हूं, क्योंकि जो अपनी भारिया है उसके विषय में अपने ही द्वारा उसकी प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता। दूसरे लोग प्रमाण देवें, दूसरे प्रशंसा करें, तब वो प्रशंसनीय बात होती है। तो राम जी की फटकार सीता के गौरव को बढ़ाने के लिए थी, सीता का तिरस्कार करने के लिए नहीं थी, सीता को हीन दृष्टि से दिखाने के लिए नहीं थी। इसलिए राम जी ने अग्नि की परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा में स्वयं अग्नि देवता ही आ गए और शीतल हो गए। अब जो है क्या करते हैं। तो ये सब बातें हैं शास्त्रों की, इनमें लिखी हुई बात पर श्रद्धा होनी चाहिए। महाराज जी ने ये भी बात कही कि या तो लिखी हुई पर विश्वास कर लो, और यदि नहीं मानते हो तो कहते जो कुछ लिखा हम इसमें से एक भी बात नहीं मानेंगे। दशरथ जी के बेटा राम हुए ये तो मानेंगे, लेकिन कहेंगे वो भगवान नहीं थे। अच्छा भाई भगवान नहीं थे क्या पता आपको कि देखो भगवान होते तो वो सीता को खोजने के लिए हनुमान को क्यों भेजते, सर्वशक्तिमान भगवान खुद ही चले जाते सीता को ले आने। अरे भगवान किस समय कौन लीला करने के लिए क्या करते हैं, कितना राम जी ने देखो सुग्रीव आदि के साथ प्रेम करके हनुमान का गौरव बढ़ा करके बाली को भी सदगति प्रदान करके विभीषण को शरण में लेकर के रावण को भी समझा करके ये सब लीलाएं की है राम जी ने। भगवान की जो लीला होती है वो लीला सबके लिए होती है, केवल एक के लिए नहीं होती। राम जी के लिए सीता प्राप्त थोड़ी करनी थी, राम जी को तो लीला करके हम लोगों के सामने आदर्श स्थापित करना चाहिए था, आदर्श स्थापित करना था और वो उन्होंने आप आदर्श स्थापित किया भी, उसको लेकर के लीला हुई है। तो या तो यही माने कि राम जी के बेटे दशरथ जी के बेटा राम जी हुए ही नहीं थे, ये रामायण हुई ही नहीं, तब तक तो वो इतनी बुरी बात नहीं कि आप साहब हम रामायण को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते साहब, हमारी मान्यता नहीं है। पर रामायण को मानेंगे भी और रामायण में आधी बात मानेंगे और आधी बात नहीं मानेंगे, ये ज्यादा नुकसान है। जिस प्रकार से आधा वैद्य होता है, आधी जानकारी वाला वैद्य, आधी जानकारी वाला डॉक्टर, आधी जानकारी वाला वो चिड़ा फोड़ करने वाला, वो इनसे नुकसान होता है। और जैसे आधी कच्ची पक्की रोटी होती है उससे नुकसान होता है, आधी पकी हुई दाल से नुकसान होता है, जो चीज आधी कच्ची आधी पक्की हो बीमारी पैदा करती है। ऐसे ही अधकिचरा ज्ञान होता है वो भी एक तरह से शूल पैदा करने वाला होता है। इसलिए संतों ने कहा कि भाई या तो पूरा ही नास्तिक हो जाओ तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, या पूरे आस्तिक बनो, थोड़े नास्तिक थोड़े आस्तिक, इसके अंदर मध्य में लटकते रहेंगे, कहीं कोई बात नहीं मिलेगी। राम जी ने बड़े विश्वास के साथ देवताओं के बीच में कहा था कि मुझे मालूम है कि रावण के अंतःपुर में रहते हुए भी सीता सर्वथा निर्दुष्ट है, सीता बड़ी श्रेष्ठ है, बस केवल लोगों के विश्वास के लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। ऐसी ऐसी बातें हुई देवताओं के बीच में। वहां पर कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शंकर भी आए। भगवान शंकर ने भी भगवान की श्री राम की सब बातें सुनी और सुनकर के अब भगवान शंकर कहने लगे कि हे कमल नेत्र, हे महाबाहु, हे शत्रुसूदन, आज आपका हमने दर्शन किया है, ये हमारा भाग्य खुल गया है। आप धर्मधारियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, संपूर्ण लोगों के आनंद के लिए आपने वो काम किया है कि जो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। कितना बड़ा यहां अंधकार छाया हुआ था रावण के प्रताप का, वो आपने उसको दूर किया है। अब आप अयोध्या जाइए, भरत से मिलिए, यशस्विनी कौशल्या से मिलिए, कैकेयी और सुमित्रा से मिलिए, अयोध्या का राज्य कीजिए, अयोध्या वासियों को आनंदित कीजिए, इक्ष्वाकु वंश का विस्तार कीजिए, अश्वमेध यज्ञ कीजिए और ब्राह्मणों को उचित धन वगैरह दान में देकर आप अपने स्थान पर चले जाइए, ये अब आपका इतना काम बाकी है। ये देखिए ये आकाश में विमान पर बैठे हुए दशरथ जी महाराज, इनके दर्शन कीजिए, ये इस समय में स्वर्ग लोक से मनुष्य लोक की तरफ आए हैं। हे राम, माता पिता ये गुरु हुआ करते हैं, ये आपके गुरु हैं, इनको प्रणाम करो। इंद्रलोक से केवल आपके दर्शन के लिए आए हैं, पिता को आपने सदा के लिए मुक्त कर दिया, तार दिया है। लक्ष्मण के साथ और अपनी भारिया के साथ अपने पिता दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करो। महादेव जी की बात सुनकर के भगवान ने दृष्टिपात किया, वही दशरथ जी महाराज, वही दशरथ जी महाराज का स्वरूप। उस समय राम जी के आनंद की सीमा नहीं रही। राम जी ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, सीता जी ने प्रणाम किया। बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे दशरथ जी महाराज ने, बड़े सुंदर उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी, बड़ा सुंदर सफेद वस्त्र पहन रखा था। और ऐसे राम जी महाराज को नहीं, दशरथ जी महाराज को देख करके राम जी महाराज आनंद में डूब गए। और दशरथ जी महाराज भी प्राणों से ज्यादा प्रिय राम और लक्ष्मण सीता तीनों को देख करके बड़े आनंदित हुए। वे विमान से और नीचे आए, नीचे आकर उन्होंने राम को अपने गोद में रख लिया और राम के साथ में उन्होंने जो है बड़े प्रेम से बातचीत करते हुए कहा, हे राम, मैं तुम्हारे वन में चले जाने के पश्चात स्वर्ग में आया। यहाँ देवता लोग मेरा तुम्हारे विषय में बोल बोल करके बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, परंतु तुम्हारे से रहित होकर के जब मैं यहाँ स्वर्ग में आया हूँ तो भी मुझे स्वर्ग का सुख भी अच्छा नहीं लगता है। ये मैं तुम्हें सत्य बात बोलता हूँ। आज मैंने परम आनंद के साथ शत्रु रहित तुम्हारे दर्शन किए हैं। राम, तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो चुकी है। तुम्हें देखकर मेरे मन में अगाध प्रीति पैदा हो रही है। कैकेयी ने जो वचन कहे थे उन वाक्यों का तुमने पालन कर लिया है और ये बात मेरे हृदय में बात बैठी हुई है कि कैकेयी ने ये बात अच्छी नहीं कही थी, परंतु जब तुमको मैं इस प्रकार से सकुशल देखता हूँ तो मेरा मन आनंद से भर जाता है, कैकेयी की बातों की तरफ अब मन नहीं जाता। राम, तुम भी कुशल हो, लक्ष्मण भी कुशल है, सीता भी सकुशल है, बस आप तीनों के दुख से ही मैं दुखी था, अब तीनों के सुख से मैं सुखी हो गया हूँ। जिस प्रकार से कोहरे से निकला हुआ सूर्य कितना चमकता है, इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का ये कोहरा था, ये कोहरा समाप्त हो गया है। तुमने हमारा उद्धार कर दिया बेटा। जिस प्रकार से अष्टावक्र ने अपने पिता कहुल का उद्धार किया, वैसे तुमने हमारा उद्धार किया है। अब मैं इन देवताओं के साथ ही जाता हूँ। देखो, मैं इन देवताओं के साथ ही तुम्हारे यहाँ आया था। रावण के वध के लिए तुम आए, ये बात तो मुझे इन देवताओं से अभी स्तुति हुई तब पता चला, नहीं तो मुझे मालूम ही नहीं था। तुमने मेरे यहाँ अवतार लिया है, तुम साक्षात पुराण पुरुषोत्तम भगवान हो, इस बात की मुझे पहले कोई जानकारी नहीं थी। देवताओं ने बताया तो पता चला कि अरे मेरा बेटा राम ये साक्षात विष्णु है, ये नारायण है, ये रावण आदि का विनाश करने के लिए देवताओं का भेजा हुआ है, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। और आज तुमको देख करके मेरा मन बड़ा खुश प्रसन्न हुआ है राम। तुमने अपने शत्रु का नाश करके संपूर्ण त्रिलोकी में अपने विजय का डंका बजा दिया। ओहो, कौशल्या बड़ी श्रेष्ठ माता है तुम्हारी, कि जो तुम्हारा दर्शन करेगी। कौशल्या को बड़ा आनंद का अनुभव होगा। वे नगरवासी बड़े धन्य हैं जो तुम्हारा वहां पर दर्शन करेंगे। तुम यहाँ पृथ्वी का शासन करोगे, उस समय अयोध्यावासी तुम्हें देखेंगे, हमारे चित्त में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये तुम्हारा छोटा भाई भरत भी बड़ा धर्मात्मा है राम, बड़े प्रेम से आपकी पूजा कर रहा है। जिस प्रकार से तुमने त्याग के साथ में ये 14 वर्ष की अवधि पूरी की है, वैसा ही त्याग भरत ने भी किया है। वसता सीतया सार्धम मद प्रीत्या लक्ष्मणी निच, उस भरत का मेरे प्रति भी बड़ा प्रेम है, तुम्हारे प्रति, मेरे प्रति, लक्ष्मण के प्रति और सीता के प्रति। जाओ, वनवास की अवधि पूरी हो गई, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, रावण को तुमने मार करके देवताओं को संतुष्ट कर दिया, राम किसको नहीं किया, मुझे भी संतुष्ट कर दिया, सीता को भी संतुष्ट कर दिया, सुग्रीवादी बांदरों को तुमने संतुष्ट कर दिया, सबको संतुष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, तुम्हारा ये अनुपम यश युग युगांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक लोग गाते रहेंगे, उन सबको भी ये संतुष्ट करता रहेगा। भ्रातृ भी सह राज्यस्थो दीर्घम आयुर अवापनुहि, मैं यही आशीर्वाद देता हूँ, तुम अपने भाइयों के साथ दीर्घ आयु प्राप्त करके संसार में धर्म की स्थापना करो। अपने पिता की प्यार भरी वाणी सुनकर के राम जी महाराज उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे पिताजी, आप धर्म को जानने वाले हो, यदि आपको मुझे देखकर कुछ प्रसन्नता हो रही है तो आज आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। बोलो राम, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे सो दे दूंगा। मैं भी दो वरदान मांगना चाहता हूं, जैसे माता केकी ने दो वरदान मांगे, ऐसे मैं भी दो वरदान मांगना चाहता हूं। हां बोलिए, आप बोलिए क्या वरदान है। आपने जो कहा है उसको मैं पूरा करूंगा राम। अच्छा महाराज, मेरा पहला वरदान है, आपने कहा था कि मैं हे केकई तेरा त्याग करता हूं। ये केकई के त्याग के जो शब्द आपने कही ये वापस ले लीजिए, और आप केकई को कौशल्या के समान, सुमित्रा के समान स्वीकार कर लीजिए। तथास्तु। दूसरा, आपने केकई को भरत के साथ में त्यागा था कि भरत का भी त्याग करता हूं, आप भरत को भी स्वीकार कर लीजिए। दशरथ जी महाराज ने कहा तथास्तु, बड़े प्रसन्न हो गए। और उसके बाद लक्ष्मण को अपने छाती से लगाते हुए भगवान श्री राम, भगवान श्री राम के सामने दशरथ जी ने कहा, बेटा लक्ष्मण, तुमने जो राम जी की सेवा की है, सीता जी को सेवा की है, इसका बहुत बड़ा फल तो यही है कि मैं प्रसन्न हो गया। तुमको बहुत बड़ा धर्म फल मिलेगा, क्योंकि अपने बड़े भाई की और सीता की सेवा जो तुमने निष्काम भाव से की है, इसका बहुत लाभ का काम किया तुमने। तुम धर्म को प्राप्त होगे, तुम्हारा यश फैलेगा और राम के प्रसन्न हो जाने के बाद तुमको ऊंचे लोगों की प्राप्ति होगी। हे सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण, तुम राम की फिर भी सेवा करते रहना, राम के हित में लगे रहना। मुझे तो अब पता चला कि इंद्रादि देवता भी भीतर ही भीतर राम की सेवा ही करते रहते थे। ये ऋषि हैं, सिद्ध हैं, ये भी राम जी की सेवा करते रहते हैं। ये मुझे बोलते हैं कि राम तो परमात्मा है, तो भाई इस ऐसे परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम की तुम सेवा करते रहना। ये राम हे सौम्य देवताओं का हृदय है, धर्माचरण के द्वारा इन्होंने बहुत बड़ा यश प्राप्त किया है, अतः आप लोगों को और सीता जी को दोनों को राम की खूब सेवा करनी चाहिए। लक्ष्मण जी पर दशरथ जी महाराज बड़े खुश हो गए। हो खुश क्यों थे? कि सुमंत ने जाकर लक्ष्मण जी से कहा कि महाराज मुझे दशरथ जी से जाकर कहा कि मुझे लक्ष्मण ने बहुत कठोर बात कही है आपके बारे में। तो दशरथ जी खुश हो गए कि मेरी कठोर वाणी भी लक्ष्मण सह नहीं सका है राम के लिए, दूसरा यदि कोई राम के लिए कुछ कठोर कहेगा उसको तो लक्ष्मण चीर फाड़ कर देगा, उसको तो लक्ष्मण छोड़ेगा भी नहीं। ऐसा उनके मन में उत्साह हुआ था। तो राम सर्वस्य लोकस्य, और उसके बाद में सीता को देख करके तो दशरथ जी के आंखों में आंसू आने लगे। सीता को देख के कहा पुत्री, पुत्री बोल करके अपनी वाणी उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक ली क्योंकि वाणी लड़खड़ा गई थी। उसके बाद कहा कि देखो सीते, अभी राम ने तुमको सब लोगों के बीच में जिस त्याग की बात कही थी उस त्याग को तुम और दृष्टि से देखना। सब लोगों में तुम्हारे प्रति शुद्धि का विश्वास हो जाए इसलिए तुम्हारे हित के लिए उन्होंने कठोर बात कही है। तुम्हारे चरित्र में कोई कमी नहीं है, इस बात को राम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। न तुम कामम समाधेया भर्तृ शुश्रूषणम प्रति, मैं तुमको कोई उपदेश तो नहीं दे सकता हूं कि तुम अपने पति की सेवा करना ये करना क्योंकि तुमने किया है। मैं तुम्हें ये बात नहीं कहता, मैं तो तुमको ये कहना चाहता हूं कि देखो सीते, अपना पति होता है वो संसार में सबसे बड़ा परमात्मा का स्वरूप होता है। परमात्मा स्त्री के लिए कौन है, भगवान कौन है, उसका पति ही भगवान है, उसका पति ही परमात्मा है। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने सबसे मिलकर के आशीर्वाद देकर के विमान में विराजमान होकर वे अपने लोक में चले गए। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न थे। दशरथ जी के चले जाने के बाद इंद्र आए। इंद्र आकर के कहने लगे कि हे राम, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हम सब अपने मन में कुछ बात लेकर आपके पास आए हैं। आपके मन में कोई भी इच्छा हो आप निसंकोच हमें बताइए, हम आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। राम जी ने कहा अच्छा इंद्र, तुम हमारी इच्छा पूरी करोगे? हां भगवान, आज आपकी इच्छा पूरी करने का हमारा विचार बना है क्योंकि आपने रावण को मारकर सारे संसार को बड़ा आनंद प्रदान किया है। देवताओं का हृदय में लगने वाला शूल था वो शूल आपने काट दिया है, देवताओं का मन आनंद से भर दिया है। भगवान ने कहा अच्छी बात है, हे देवश्रेष्ठ, यदि तुम हमारे पर प्रसन्न हो तो हम कहें वैसा करना है, जो आज्ञा दे तैयार है महाराज। तो ऐसा करो कि रावण की सेना ने हमारे बांदरों का बड़ा संहार किया है, तो रावण ने तो अपने मरे हुए राक्षसों को समुद्र में भेज दिया और मैंने अपने मरे हुए बांदरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। तुम उन सब बंदरों के ऊपर अमृत की वर्षा करके सबको जीवा दो, सब जी जाए, और जी भी जाए तो कहीं कोई घायल न रहे, कहीं कोई बीमार न रहे, कहीं पर कोई टूटा हुआ अंग वाला न रहे। बोलिए क्या राय है? क्या ठीक है महाराज? ऐसा ही होगा। मेरे ये शूरवीर बानर जिन्होंने मृत्यु की परवाह नहीं की और इस विपत्ति के समय में मेरा साथ दिया है, इन बंदरों को तुम जिलाओ। ये मेरे प्रिय कार्य के अंदर लगे रहे, आलस्य इन्होंने किया नहीं, रात देखा नहीं, दिन देखा नहीं, ऐसे मेरे बानर स्वस्थ हो जाएं, किसी के शरीर पर कोई भी घायल का चिन्ह भी न रहे,